एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार।
आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो सिर्फ ज्ञान के बारे में नहीं है, बल्कि ये पूछती है कि हम ज्ञान को जानते कैसे।
हाँ, मतलब कौन सी चीजें हैं जो हमारे सोचने के तरीके को बनाती हैं, और क्या ये तरीके हमेशा से ऐसे ही थे?
बिल्कुल। आज हम बात कर रहे हैं मिशेल फूको की एक बेहद प्रभावशाली और हाँ, कुछ हद तक मुश्किल भी किताब, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स।
सही कहा। इसका फ्रेंच नाम है ले मो ए ले शोज, जिसका मतलब हुआ शब्द और वस्तुएं।
और देखिए, ये किताब आज भी उतनी ही जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा।
क्यों, आप ऐसा क्यों कह रही हैं?
क्योंकि आज का जो दौर है, इतनी सूचनाएं हैं चारों तरफ, है ना, तो ये किताब हमें रुककर सोचने को कहती है कि भाई, जिसे हम सच मान रहे हैं या फैक्ट समझ रहे हैं, वो आखिर आता कहां से है? हाँ। और फुको का जो मेन तर्क है वो यही है कि ज्ञान कोई सीधी सपाट सड़क पर नहीं चलता, इसमें बड़े क्रांतिकारी किस्म के मोड़ आते हैं।
और इससे भी ज्यादा मतलब चौंकाने वाली बात जो फुको कहते हैं वो ये कि मनुष्य,
हाँ मनुष्य, जिसे हम अक्सर सोचते हैं कि वही तो ज्ञान का केंद्र है, वही ब्रह्मांड का सेंटर है।
हाँ, तो फूको कहते हैं कि वो खुद इतिहास की एक उपज है, कोई हमेशा से चला आ रहा सच नहीं,
बल्कि एक विचार जो शायद उतना पक्का ना हो जितना हम सोचते हैं। उनकी वो मशहूर लाइन है ना,
कौन सी,
कि मनुष्य शायद ऐसे मिट जाएगा जैसे समुद्र किनारे रेत पर बना चेहरा।
उफ, हाँ, ये वाकई सोचने पर मजबूर करती है।
तो चलिए पहले इस विचारक के बारे में थोड़ा जानते हैं। मिशेल फूको 1926 से 1984 तक 20वीं सदी के फ्रांस के सबसे जाने माने दार्शनिकों और सामाजिक चिंतकों में से एक।
बिल्कुल।
और पेरिस का जो प्रतिष्ठित कॉलेज दो फ्रांस है, वहां उन्हें प्रोफेसर का पद मिला था, जो कि अकादमिक दुनिया में बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है।
हाँ, लेकिन फूको को किसी एक दायरे में बांधना बड़ा मुश्किल है। वो कोई टिपिकल इतिहासकार नहीं थे, ना ही सिर्फ दार्शनिक।
सही कहा। वो खुद को कहते थे ज्ञान का पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ नॉलेज।
पुरातत्वविद मतलब?
जैसे पुरातत्वविद जमीन खोदकर पुरानी चीजें निकालते हैं ना, वैसे ही फूको विचारों की परतों को हटाकर ये देखते थे कि किसी खास जमाने में सोचने के नियम क्या थे, बुनियादी मान्यताएं क्या थीं।
अच्छा, ये दिलचस्प तरीका है सोचने का।
उनका काम कई फील्ड्स को छूता है, इतिहास, दर्शन, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी। द ऑर्डर ऑफ थिंग्स से पहले भी उनकी किताबें थीं, जैसे मैडनेस एंड सिविलाइजेशन।
हाँ, पागलपन और सभ्यता, उसमें उन्होंने दिखाया था कि कैसे समाज पागलपन जैसी चीजों को डिफाइन करता है।
बिल्कुल। और कैसे ये परिभाषाएं ताकत और कंट्रोल से जुड़ी होती हैं। उनकी अपनी जो पृष्ठभूमि थी, उन्होंने मनोविज्ञान पढ़ा था, कुछ वक्त मानसिक अस्पतालों में काम भी किया, और वो घंटों पुराने दस्तावेजों में खोए रहते थे।
तो इन सब ने उन्हें एक अलग नजरिया दिया होगा।
हाँ, वो देख पाए कि कैसे ज्ञान की व्यवस्थाएं बनती हैं, बदलती हैं, और कैसे वो समाज में पावर के रिश्तों को तय करती हैं। वो हमेशा थोड़ा हटकर जो मान ली गई बातें हैं उन पर सवाल उठाते थे।
चलिए अब सीधे किताब पर आते हैं। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो क्या है?
तो फूको का कहना है कि ज्ञान धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बेहतर होकर आगे नहीं बढ़ता, ऐसा नहीं है।
अच्छा, तो फिर कैसे?
बल्कि इतिहास में ऐसे दौर आते हैं जब सोचने का पूरा ढांचा ही बदल जाता है। इन ढांचों को वो एपिस्टीम कहते हैं।
एपिस्टीम, ये शब्द थोड़ा भारी है।
हाँ, लेकिन इसे आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी युग का ऑपरेटिंग सिस्टम।
ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर वाला।
हाँ, एक तरह से ये वो छुपे हुए नियम हैं, वो बुनियादी मान्यताएं जो तय करती हैं कि उस जमाने में क्या जानना मुमकिन है, कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और कौन से जवाब सही माने जाएंगे।
अच्छा, तो ये हमारे सोचने की जमीन है जिस पर हम चलते हैं बिना ये जाने कि ये जमीन बनी कैसे है।
बिल्कुल। और फूको पश्चिमी सोच के इतिहास में तीन बड़े एपिस्टीम की पहचान करते हैं, पुनर्जागरण काल से लेकर हमारे अपने आधुनिक युग तक।
और ये बदलाव दिखते कैसे हैं?
वो तीन खास एरिया पर फोकस करते हैं, भाषा को कैसे समझा गया, जीवन यानी जीव जंतुओं का अध्ययन कैसे हुआ, और धन या वैल्यू को कैसे समझा गया।
और इन एरिया में जो बदलाव हुए वो छोटे मोटे नहीं थे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। फूको दिखाते हैं कि एक युग से दूसरे में जाने पर इन विषयों को समझने के जो बेसिक नियम थे वही पूरी तरह बदल गए, जैसे मानो दुनिया को देखने का चश्मा ही बदल गया हो।
अच्छा।
और इसी रास्ते पर चलते हुए वो उस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मनुष्य मतलब ज्ञान जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, दोनों रूपों में वो खुद एक आधुनिक एपिस्टीम की देन है। कोई 200-250 साल पुरानी ही बात है ये।
ये तो सच में चौंकाने वाला है। ठीक है, तो जरा और गहराई में चलते हैं। फुकू अपनी बात एक बड़े मजेदार उदाहरण से शुरू करते हैं।
हाँ, वो बोर्खेस वाला।
हाँ, अर्जेंटीनी लेखक जॉर्ज लुईस बोर्खेस की एक कहानी है जिसमें एक काल्पनिक चीनी ज्ञान कोश का जिक्र है और उसमें जानवरों को कैसे बांटा गया है, जरा सुनिए।
हाँ, वो लिस्ट तो गजब है।
क जो सम्राट के हैं।
हाँ।
ख मम्मी बनाए हुए। ग पालतू। घ दूध पीते सुअर। और भी अजीब अजीब, जैसे आवारा कुत्ते जो इस वर्गीकरण में शामिल हैं, जो दूर से मक्खियों जैसे लगते हैं।
सुनकर ही हंसी आती है, एकदम बेतुका लगता है ना।
हाँ, लेकिन फुको यही सवाल उठाते हैं कि क्या हमारी अपनी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जैसे हम जानवरों को मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स में बांटते हैं, क्या वो वाकई इतनी नेचुरल और लॉजिकल है,
या वो भी किसी खास ऑर्डर या सोचने के तरीके का हिस्सा है जिसे हमने बस मान लिया है। बोर्खेस का ये उदाहरण हमें मजबूर करता है कि हम अपनी सोच की लिमिट्स पर सवाल उठाएं। यहीं से फुको की वो ज्ञान के छुपे हुए क्रम की खोज शुरू होती है।
तो पहली एपिस्टीम वो है पुनर्जागरण युग की, लगभग 16वीं सदी।
हाँ, रेनेसा। यहाँ ज्ञान का आधार था समानता,
रिजेम्बलेंस।
समानता मतलब?
मतलब ये माना जाता था कि दुनिया एक रहस्यमयी जाल है, हर चीज किसी न किसी दूसरी चीज से जुड़ी है, मिलती जुलती है, उसका संकेत देती है। चीजों के बीच छुपे हुए कनेक्शन खोजना ही ज्ञान था।
अच्छा, जैसे?
फुको चार तरह की समानताओं की बात करते हैं, जैसे पास की चीजों का असर, दूर की चीजों का एक जैसा दिखना, छोटी चीज में पूरी दुनिया का नक्शा दिखना, या चीजों का एक दूसरे की तरफ खींचना। मुद्दा यह था कि दुनिया संकेतों से भरी थी और ज्ञान का काम था इन संकेतों को पढ़ना।
और भाषा?
भाषा सिर्फ चीजों का नाम नहीं थे, वो खुद चीजों से जुड़ी मानी जाती थी, उसमें एक तरह की जादुई ताकत थी। लेकिन फिर इस सोच में बदलाव आया।
हाँ, एक जबरदस्त बदलाव, एक विषेद, जैसा फुको कहते हैं। और हम पहुंचते हैं क्लासिकल एपिस्टीम मध्य 17वीं सदी से 18वीं शताब्दी के अंत तक।
यहाँ समानता की जगह किसने ली?
प्रतिनिधित्व और वर्गीकरण ने।
प्रतिनिधित्व मतलब चीजें किसी और चीज को रिप्रेजेंट करती हैं।
बिल्कुल। अब ज्ञान का मकसद छुपे हुए रिश्ते खोजना नहीं था, बल्कि चीजों को साफ साफ पहचानना, उनकी तुलना करना और उन्हें एक व्यवस्थित टेबल, एक टैबलो में सजाना था। दुनिया को एक बड़े कैटलॉग की तरह देखा जाने लगा।
और इसे समझने के लिए फुको एक पेंटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, वेलास्केज की लास मेनिनाज बड़ी मशहूर पेंटिंग है, थोड़ी पहेली जैसी है।
उसमें क्या खास है?
उसमें पेंटर खुद को पेंटिंग बनाते हुए दिखा रहा है, सामने राजकुमारी और उसकी दासियां हैं, लेकिन पेंटर असल में किसकी पेंटिंग बना रहा है? राजा और रानी की, जो हमें सिर्फ पीछे एक आईने में धुंधले से दिखते हैं।
अच्छा।
और हम यानी देखने वाले उस जगह खड़े हैं जहां राजा रानी को होना चाहिए था। फुको कहते हैं कि ये पेंटिंग क्लासिकल सोच का आईना है, सब कुछ प्रतिनिधित्व के बारे में है। चीजें कैसे दिखाई जाती हैं, कौन देख रहा है, कौन दिखाया जा रहा है, ये सब एक कॉम्प्लेक्स खेल बन जाता है।
और डॉन क्विकसॉट, उनका क्या रोल है इसमें?
डॉन क्विकसॉट बेचारे पुरानी रेनेसा वाली दुनिया में जी रहे हैं। वो पवन चक्कियों को दैत्य समझते हैं क्योंकि उनके लिए शब्द और चीजें अब भी एक हैं, लेकिन क्लासिकल युग के लिए वो पागल हैं क्योंकि अब शब्द चीजों से अलग हो चुके थे, सिर्फ उनके प्रतिनिधि थे।
तो इस क्लासिकल सोच का असर ज्ञान के अलग अलग एरिया पर कैसे पड़ा, जैसे भाषा पर?
भाषा में अब उसे विचारों का आईना माना गया। लक्ष्य था एक ऐसी ग्रामर बनाना जो विचारों को बिल्कुल साफ और लॉजिकल तरीके से पेश कर सके।
और जीवों के अध्ययन में?
वहां जीवों को उनके बाहरी रूप रंग, मतलब जो दिख रहा है, उसके आधार पर क्लासिफाई किया गया। जैसे लिनियस ने पौधों और जानवरों को उनकी बनावट के आधार पर बांटा, अंदर क्या चल रहा है उस पर जोर नहीं था।
और पैसे यानी धन के बारे में सोच?
धन को मुख्य रूप से चीजों के एक्सचेंज और रिप्रेजेंटेशन के साधन की तरह देखा गया। सोने चांदी का मूल्य इसलिए था क्योंकि वो बाकी चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते थे।
और फिर एक और बड़ा बदलाव आता है।
हाँ, जैसे किसी ने सोचने का स्विच ही बदल दिया हो, लगभग 1800 के आसपास। एक और विच्छेद और हम आ जाते हैं मॉडर्न एपिस्टीम में।
यहाँ क्या बदला?
क्लासिकल युग की जो सपाट टेबल थी, बाहरी वर्गीकरण था, उसकी जगह अब ले ली इतिहास ने, गहराई ने और अंदरूनी शक्तियों ने।
मतलब अब चीजों की सतह के नीचे देखना जरूरी हो गया।
बिल्कुल। वो कैसे बनी, समय के साथ कैसे विकसित हुई, उनके अंदर कौन सी ताकतें काम कर रही हैं, ये सवाल अहम हो गए।
इसका नतीजा क्या हुआ ज्ञान के क्षेत्रों पर?
वो फिर से बदल गए। जैसे प्राकृतिक इतिहास की जगह आ गया जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब जीवों को सिर्फ बाहर से नहीं, उनकी अंदरूनी बनावट, उनके अंगों के काम, उनके विकास यानी जीवन के आधार पर समझा जाने लगा।
और धन के विश्लेषण की जगह?
उसकी जगह आई राजनीतिक अर्थव्यवस्था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब वैल्यू का आधार सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा, बल्कि उत्पादन और श्रम बन गया, लेबर बन गया। चीज बनाने में कितनी मेहनत लगती है ये जरूरी हो गया।
और भाषा?
सामान्य व्याकरण की जगह ले ली भाषा विज्ञान ने, फिलोलॉजी ने। भाषाओं को अब सिर्फ विचारों का आईना नहीं, बल्कि खुद ऐतिहासिक रूप से विकसित होने वाली जीवित चीजों की तरह देखा गया, जिनकी अपनी अंदरूनी बनावट और इतिहास है।
और यहीं पर इसी आधुनिक सोच में,
हाँ, इसी आधुनिक सोच के गर्भ से फूको के अनुसार पहली बार मनुष्य ज्ञान के स्टेज पर मेन कैरेक्टर बनकर आता है।
ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, क्या मतलब है इसका? क्या इंसान पहले नहीं थे?
इंसान तो थे, लेकिन मनुष्य एक खास कॉन्सेप्ट के रूप में, ज्ञान के केंद्र के रूप में वो यहाँ उभरता है। फूको एक मुश्किल सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, आनुभविक पारलौकिक युग्म, एम्पिरिको ट्रांसेंडेंटल डबलेट।
बाप रे, ये क्या है?
हाँ, थोड़ा मुश्किल लगता है, पर इसे ऐसे समझें, आधुनिक युग में इंसान एक पहेली बन गया। एक तरफ हम उसका अध्ययन करते हैं जैसे वो कोई चीज हो, कोई ऑब्जेक्ट, आनुभविक, जैसे डॉक्टर शरीर का अध्ययन करते हैं या साइकोलॉजिस्ट मन का।
ठीक है।
दूसरी तरफ हम ये भी मानते हैं कि यही इंसान है जो सोच रहा है, ज्ञान बना रहा है, दुनिया को समझ रहा है, पारलौकिक, यानी इंसान जानने वाला सब्जेक्ट भी है और जाना जाने वाला ऑब्जेक्ट भी।
अच्छा, तो एक ही समय में ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी?
बिल्कुल। फूको कहते हैं कि ये जो दोहरापन है, ये जो टेंशन है, इसी से आधुनिक मानव विज्ञान जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी पैदा होते हैं।
तो ये विज्ञान इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमेशा इस पहेली में उलझे रहते हैं।
हाँ, कि इंसान को वस्तु की तरह देखें या कर्ता की तरह, यही उनकी ताकत भी है और शायद उनकी सीमा भी।
तो इस पूरी ज्ञान की खुदाई से, फूको के इस पुरातत्व से हमें क्या खास बातें सीखने को मिलती हैं?
सबसे पहली और शायद सबसे अहम चीज है ज्ञान की निरंतरता का भ्रम टूटना,
डिसकंटिन्यूटी ऑफ नॉलेज।
मतलब ये सोचना कि ज्ञान हमेशा आगे ही बढ़ता है, ये गलत है।
हाँ, हम अक्सर यही सोचते ना कि पुरानी खोजों पर नई खोजें जुड़ती जाती हैं। फूको कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। इतिहास में ऐसे मोड़ आते हैं जब सोचने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। पुराने नियम बेकार हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। ये बड़े विच्छेद हैं, ब्रेक्स हैं।
ये सोचना दिलचस्प है। जैसे भारत में हम प्रगति को कैसे देखते हैं? क्या हम हमेशा मानते हैं कि ये धीरे धीरे ही होता है, या यहाँ भी ऐसे बड़े बदलाव आए हैं जिन्होंने सोचने का नक्शा ही बदल दिया?
बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है मनुष्य का अंत।
हाँ, ये तो बहुत सुना है और काफी गलत भी समझा जाता है। हाँ, उनका मतलब ये नहीं कि इंसान खत्म हो जाएंगे, बल्कि ये कि इंसान को हर चीज के सेंटर में रखने वाली सोच, ये मान लेना कि इंसान ही यूनिवर्स का मापदंड है, ये बस पिछले 250 साल की बात है और ये हमेशा नहीं रहेगी।
तो ये मानव केंद्रित सोच पर सवाल है।
बिल्कुल। भारत में जहाँ मानवता, मानव सेवा जैसे विचारों का गहरा असर है, वहाँ फूको का ये कहना कि मनुष्य खुद एक ऐतिहासिक रचना है, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम अपनी सोच को सिर्फ इंसान तक ही सीमित रखेंगे?
तीसरा पॉइंट क्या है?
शक्ति और ज्ञान का गहरा रिश्ता, पावर नॉलेज। हालांकि फूको ने इस पर बाद में और ज्यादा लिखा, लेकिन इसके बीज यहां भी दिखते हैं।
मतलब
हर एपिस्टीम, हर सोचने का ढांचा सिर्फ ये तय नहीं करता कि क्या जाना जाएगा, बल्कि ये भी तय करता है कि समाज को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ज्ञान बनाना और ताकत का इस्तेमाल करना, ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
कोई उदाहरण?
जैसे क्लासिकल युग में चीजों को क्लासिफाई करने की जो धुन थी, उसने समाज में भी लोगों को बांटने और कंट्रोल करने के नए तरीके दिए। आधुनिक युग में नॉर्मल और एबनॉर्मल की जो धारणाएं बनी, उन्होंने जेल, स्कूल, अस्पताल जैसे नए संस्थान खड़े किए।
हाँ, सोचा जा सकता है कि भारत में जनगणना या जाति व्यवस्था जैसी चीजें कैसे ज्ञान और शक्ति के इस खेल का उदाहरण हो सकती हैं।
बिल्कुल। चौथा, भाषा सिर्फ जरिया नहीं, दुनिया बनाने वाली ताकत भी है, लैंग्वेज एंड रियलिटी।
ये कैसे?
फूको दिखाते हैं कि अलग अलग युगों में भाषा और असलियत के रिश्ते को अलग अलग तरह से देखा गया। रेनेसा में शब्द चीजों से जुड़े थे, क्लासिकल युग में वो विचारों के पारदर्शी प्रतिनिधि थे, लेकिन आधुनिक युग में भाषा खुद एक जटिल सिस्टम बन गई जो दुनिया को सिर्फ बयान नहीं करती बल्कि उसे गढ़ती भी है।
भारत जैसे बहुभाषी देश में तो ये बात और भी अहम हो जाती है।
भाषा को लेकर जो बहसें होती हैं, पहचान की, शिक्षा की, वो अक्सर इसी तरफ इशारा करती हैं।
सही कहा। और पांचवां, फूको की अपनी पुरातत्वीय पद्धति, आर्कियोलॉजिकल मेथड।
हाँ, वो हमें क्या सिखाती है?
वो सिखाती है कि चीजों की सतह के नीचे देखो, सिर्फ ये मत देखो कि लोग क्या कह रहे हैं, बल्कि ये समझने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों सोच पा रहे हैं, वो कौन से अनकहे नियम हैं जो उनकी सोच को मुमकिन बना रहे हैं।
तो ये किसी भी समाज, संस्था या अपने खुद के विचारों को गहराई से समझने का एक तरीका है।
फूको के लेखन में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, है ना? कुछ खास कथनों पर बात करें।
हाँ बिल्कुल।
पहला, वही जो हमने पहले भी कहा, मैन इज एन इन्वेंशन ऑफ रीसेंट डेट एंड वन परहैप्स नियरिंग इट्स एंड। मानव हाल की ही एक खोज है और शायद अपने अंत के करीब है।
ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम परमानेंट समझते हैं वो ऐतिहासिक है और बदल सकता है।
बिल्कुल, ये मानव केंद्रित सोच पर एक गहरी चोट है। दूसरा कथन उनके तरीके को और साफ करता है। द फंडामेंटल कोड्स ऑफ अ कल्चर एस्टैब्लिश फॉर एवरी मैन द एम्पिरिकल ऑर्डर्स विद विच ही विल बी डीलिंग।
किसी संस्कृति के मौलिक कोड हर व्यक्ति के लिए वे अनुभवजन्य व्यवस्थाएं स्थापित करते हैं जिनसे वो निपटेगा।
मतलब हमारे समाज के अदृश्य नियम हमारी दुनिया बनाते हैं।
हाँ, हम उसी दायरे में सोचते हैं जो हमें मिला है, अक्सर बिना ये जाने कि कोई दायरा है भी।
और तीसरा, वो मशहूर आखिरी लाइन।
हाँ, मैन वुड बी इरेज्ड लाइक अ फेस ड्रॉन इन सैंड एट द एज ऑफ द सी।
मानो मिट जाएगा जैसे समुद्र के किनारे रेत पर बना चेहरा।
ये सिर्फ मनुष्य के विचार के बारे में नहीं है, है ना?
नहीं, ये ज्ञान की किसी भी व्यवस्था की नाजुकता और अस्थिरता को दिखाता है। जो आज इतना ठोस लगता है, कल शायद लहरों में बह जाए। बहुत ही पावरफुल इमेज चाहिए।
अच्छा, ये सब तो बहुत गहरी बातें हैं, थोड़ी मुश्किल भी, लेकिन सवाल ये है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना? क्या हम फूको के इस विश्लेषण से कुछ प्रैक्टिकल चीजें सीख सकते हैं?
हाँ हाँ, बिल्कुल ही सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हम सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस पर सवाल उठाना सीखें।
मतलब जो चीजें हमें नॉर्मल लगती हैं।
हाँ,
फूको हमें दिखाते हैं कि जो चीजें हमें बिल्कुल स्वाभाविक लगती हैं, जैसे परिवार कैसा हो, सक्सेस क्या है, जेंडर रोल्स क्या हैं, वो अक्सर किसी खास समय और समाज की देन होती हैं, कोई अटल सच्चाई नहीं। ये जानने से हम दूसरों के नजरियों के प्रति ज्यादा खुले हो सकते हैं।
सही बात है।
जैसे भारत में ही देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार या शादी की सोच कैसे बदली है, या काम को लेकर सोच कैसे बदल रही है। फूको हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ये बदलाव शायद गहरे ढांचों में हो रहे बदलावों का नतीजा है।
बिल्कुल। दूसरा, हम ज्ञान के अलग अलग फील्ड्स की बाउंड्रीज को समझ सकते हैं। हम सोचते हैं ना, साइंस अलग, आर्ट्स अलग, कॉमर्स अलग।
हाँ, ये तो स्कूल से ही सिखाया जाता है।
फूको दिखाते हैं कि ये बंटवारे भी ऐतिहासिक रूप से बने हैं। ये समझने से हम अलग अलग विषयों के बीच पुल बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिसे इंटरडिसिप्लिनरी सोच कहते हैं।
जैसे सेहत की समस्या को सिर्फ डॉक्टर की नजर से नहीं, बल्कि समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक की नजर से भी देखना।
सही। तीसरा, हम ज्यादा क्रिटिकल तरीके से सोच सकते हैं।
मतलब?
जब हम कोई खबर पढ़ते हैं, कोई भाषण सुनते हैं, या सोशल मीडिया पर कुछ देखते हैं, तो हम पूछ सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी मान्यताएं काम कर रही हैं, किस तरह की भाषा यूज हो रही है, सच को कैसे बनाया जा रहा है। फूको हमें सिखाते हैं कि हर बयान के पीछे एक छुपा हुआ ढांचा होता है।
जैसे भारत में विकास पर जो बहसें होती हैं, विकास का मतलब क्या है, किसके लिए विकास, फूको का नजरिया हमें इन बहसों के पीछे छिपे पावर इक्वेशंस और नॉलेज सिस्टम्स को देखने में मदद कर सकता है।
बिल्कुल। और चौथा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है बौद्धिक विनम्रता,
इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी,
सोचने में विनम्रता। हाँ, अगर ज्ञान की व्यवस्थाएं बदल सकती हैं, अगर मनुष्य खुद एक रचना है, तो इसका मतलब है कि हमारा आज का ज्ञान भी आखिरी नहीं है। ये हमें नए विचारों और अलग नजरियों के प्रति ज्यादा खुला बनाता है और अपने ज्ञान की सीमाओं को मानने में मदद करता है।
तो इस पूरी बातचीत को समेटते हुए मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख रही वो ये कि दुनिया को देखने का हमारा तरीका, हमारी कैटेगरीज, हमारे नियम, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये बदले हैं और बदल सकते हैं। वो बोर्खेज वाली चीनी ज्ञानकोश की कहानी, वो सच में दिमाग में घूम रही है।
हाँ, वो हंसाती है, लेकिन हमारी अपनी सोच की दीवारों पर दस्तक भी देती है।
बिल्कुल।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा असरदार रही, वो है मनुष्य के विचार की ऐतिहासिकता। ये सोचना कि इंसान हमेशा से ज्ञान का केंद्र नहीं था और शायद हमेशा रहेगा भी नहीं, ये थोड़ा बेचैन करता है, पर इसमें एक तरह की आजादी भी है।
हाँ, ये मौजूदा सोच से आगे देखने की चुनौती देता है।
बिल्कुल। और वो रेत पर बने चेहरे वाली इमेज वो वाकई याद दिलाती है कि हमारे सारे ज्ञान के महल कितने मतलब टेम्पररी हो सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।